पृष्ठ संख्या 432, अध्याय 14, अनुशासन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन। प्रकृति स्वयं अनुशासित रहकर ही इस संसार चक्र को चला सकती है। रात दिन का होना, मौसम का बदलना, फूलों का खिलना एवं मुरझाना, सूरज का उगना एवं डूबना, ये सभी क्रियाएं अनुशासन के अधीन ही हैं। यदि प्रकृति अनुशासन के नियमों को तोड़ दे, सर्वत्र हाहाकार मच जाएगा। यदि सूरज उगना डूबना छोड़ दें, नदियां बहना छोड़ दें, पृथ्वी धैर्य न रखे, पर्वत अटल रहना छोड़ दें, बादल बरसना छोड़ दें, तो प्रकृति में अंधकार ही अंधकार व्याप्त हो जाएगा। लोग जल के एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे और सारे संसार का नाश हो जाएगा। अतः अनुशासन तो संसार के संचालन के लिए जरूरी है। अनुशासन विभिन्न योग्यताओं तथा समाज द्वारा मान्य मूल्यों, आदर्शों, नैतिक व्यवहारों आदि के विकास के लिए जरूरी है। अनुशासित व्यक्ति सफलता की हर मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकता है तथा अपना जीवन आनंद पूर्वक बिता सकता है। ऋषि मुनियों ने भी मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए अनुशासन को अति महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने स्वशासन, स्वयं प्रशासन पर जोर दिया है। भारतीय मनीषियों का मानना है कि व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर शासन करना आना चाहिए। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर शासन नहीं कर सकता, उन्हें अपने वश में नहीं कर सकता, वह क्या खाक दूसरों पर शासन कर सकेगा? अपने बच्चों को अनुशासित रख सकेगा? नहीं, कदापि नहीं। दूसरों को अनुशासन में रखने के लिए पहले स्वयं पर शासन करने आना चाहिए, अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए। संयम, त्याग, तपस्या, उपासना, व्रत, उपवास, ये सभी अनुशासन ही विभिन्न रूप हैं। इनके संयमित जीवन बिताने में सहायता मिलती है। अनुशासनहीन व्यक्ति न केवल अपने अहित करता है, बल्कि परिवार व समाज को भी विभिन्न विनाश के गड्ढे में गिरा देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि बालकों को बचपनावस्था से ही अनुशासन में रहना सिखाना चाहिए, उन्हें संयमित जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि बालक अश्लील पिक्चर देखना चाहता है, गंदा साहित्य पढ़ना चाहता है, फूहड़ गाने सुनता है, तो उन्हें ऐसा करने से रोके तथा यह समझाएं कि यह सब उनके सुंदर भविष्य निर्माण के लिए अहितकर है। उसे अपने इंद्रियों को वश में करना सिखाएं। माता पिता एवं शिक्षकों को यह पुनीत कर्तव्य है कि वे अपने बालक को नैतिक शिक्षा एवं अनुशासन के द्वारा सुंदर गुणों को सिखाएं, जिससे उनका भविष्य सुंदर बन सके। पृष्ठ संख्या 433, विंसेंट एवं मार्टिन के अनुशासन के महत्व को स्वीकारते हुए लिखा है। Everyone needs the desire to those of other discipline rules of conduct in order to adjust his needs and in order to keep the affection and approval of people around him. भारतीय मनीषियों ने मानव विकास और मानव जीवन के सभी आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना है तथा इसकी पालना पर जोर दिया है। उनके अनुसार जीवन में प्रथम 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से बालक में तेज उत्पन्न होता है, जिससे उनका अंतर्मन प्रकाशित होता है। वह विभिन्न शील गुणों को सीखता है, विद्यार्जन करता है, शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान सीखता है, जिससे उनका भविष्य सुंदर एवं सुखद बनता है। अतः स्पष्ट है कि अनुशासन व्यक्ति को महान बनाता है। अनुशासन बालक अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों एवं शिक्षकों से सीखता है। वे उसे नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों, आदर्शों आदि को सिखाते हैं, जिससे बालक का भविष्य उज्जवल बनता है। परिणाम स्वरूप बालक देश का एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, योग्य, कर्मठ, कुशल एवं परिश्रमी नागरिक बनता है। अनुशासन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन अंग्रेजी के डिसिप्लिन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है मिलिट्री ट्रेनिंग, युद्ध शिक्षा, इंस्ट्रक्शन, नियमबद्धता, सीख दंड, दमन आदि। डिसिप्लिन शब्द डिसिप्लिन से बना है, जिसका अर्थ होता है शिष्य अथवा चेला। यहाँ अनुशासन का सीधा संबंध आज्ञा के अनुसार चलना। अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु एवं शासन। अनु का अर्थ है पीछे तथा शासन का अर्थ है आज्ञा। अतः आज्ञा के पीछे चलना अर्थात आज्ञा का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। सरल शब्दों में अनुशासन से तात्पर्य प्रशिक्षण एवं अधिगम की उस प्रक्रिया से है, जो बालक की वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। नंबर एक, एफ एस डुबोसिस ने अनुशासन को परिभाषित करते हुए लिखा है। डिसिप्लिन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड लर्निंग दैट फास्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नंबर दो, ईवी हरलॉक ने डिसिप्लिन को परिभाषित करते हुए अपनी पुस्तक चाइल्ड डेवलपमेंट में लिखा है, डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम द सेम वर्ड एज डिसिप्लिन, वन हु लर्न्स फ्रॉम अ वॉलंटियरी फॉलो अ लीडर, द पेरेंट्स एंड टीचर्स आर द लीडर्स एंड द चाइल्ड इज द डिसिप्लिन हु लर्न्स फ्रॉम देम द वेज ऑफ लाइफ दैट लीड टू यूजफुल एंड हैप्पीनेस। नंबर तीन, एम एल हॉफमैन के अनुसार डिसिप्लिन इज द सोसाइटीज वेज ऑफ टीचिंग द चाइल्ड एंड मोरल बिहेवियर अप्रूवल बाय द ग्रुप। पृष्ठ संख्या 434, अनुशासन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन का मुख्य उद्देश्य बालकों को उन व्यवहार प्रतिमानों को सिखाना है जो समाज एवं संस्कृति द्वारा मान्य होते हैं और जिनसे बालकों के सामाजिक समायोजन में सहायता मिलती है। अनुशासित बालक समाज एवं राष्ट्र के अमूल्य निधि होते हैं जिसके कारण देश सफलता की सीढ़ियों को पार करता हुआ अपने विकास का परचम संपूर्ण विश्व में लहराता है। हाँ, हम में से अधिकांश लोग अनुशासन का गलत अर्थ लगाते हैं तथा वे कठोर दंड को ही अनुशासन समझते हैं, परंतु उनकी यह एक बड़ी भूल है। कठोर दंड अनुशासन का पर्याय नहीं है। कठोर दंड तो बालक के कोमल मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कठोर दंड बालक को उद्दंड, आक्रामक, क्रोधी, तानाशाह एवं विद्रोही बना सकता है। दंड के भय के कारण बालक भले ही ऊपर से शांत चुपचाप रहता हो, परंतु उसके मन में बदले की भावना हिलोरे लेती रहती है। वह भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहता है। वह कभी कभी इतना अधिक घृणित एवं अप्रत्याशित कार्य कर बैठता है जिसका कभी आशा नहीं किया जा सकता है। आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक बिल्कुल सीधा साधा निश्चल बालक वैसे कार्यों को अंजाम देता है जिससे उसके द्वारा कभी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसका प्रमुख कारण है कठोर दंड। कठोर दंड के भय से बालक ऊपर से शांत एवं भोला भाला बना दिखता रहता है, परंतु उसके मन में बदले की भावना जहरीले नाक की भांति डसने के लिए आतुर रहती है। यह स्थिति अधिक घातक होती है, इसलिए अनुशासन का अर्थ कठोर दंड है ऐसा मानना सरासर गलत है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के अनुशासन से संबंधित अनेक अध्ययन किए हैं तथा इस पर निष्कर्ष तक पहुंचे हैं कि बालकों के बाल्यावस्था से ही अनुशासित रहना सिखाना चाहिए, नैतिक मूल्यों के बारे में बताना चाहिए, नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते समय इसके संबंध में विस्तार से बताना चाहिए, उन्हें केवल आदेशात्मक तथ्य बताकर अनुशासन की पालना करना नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि उन्हें प्यार से समझना चाहिए कि किसी कार्य को क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। जब कार्य एवं कारण से संबंध स्थापित हो जाएगा तो बालक स्वतः ही अच्छे बुरे, उचित अनुचित, भले बुरे के बारे में जान जाएगा। बाल्यावस्था में बालक जो कुछ भी सीखता है उसकी अमिट छाप पड़ती है जो उसके व्यक्तित्व में झलकता है। अनुशासन की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन मानव जीवन की आत्मा है, इसके बगैर तो व्यक्ति सभ्य समाज का नागरिक नहीं बन सकता। मानव को सामाजिक प्राणी कहलाने का अधिकार छिन जाता है। अनुशासनहीन समाज में चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार आदि का बोलबाला रहता है। समाज में मानव मानव होकर भी पशुवत जीवन जीने को मजबूर होता है। सर्वत्र अनाचार, भ्रष्टाचार एवं दुराचार का राज्य रहता है। ऐसी स्थिति में सफलता एवं विकास की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। पृष्ठ संख्या 435, तो आइए जानें कि अनुशासन की क्या क्या विशेषताएं हैं। अनुशासन की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं। नंबर एक, अनुशासन बालकों के भविष्य निर्माण का प्रभावशाली माध्यम है। डिसिप्लिन इज द इफेक्टिव मीन्स ऑफ मेकिंग फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन। अनुशासन बालकों के भविष्य निर्माण का सबसे प्रभावी एवं सशक्त माध्यम है। अनुशासित बालक सभी कार्यों को समय पर पूरा करते हैं। समय की पाबंदी, कठोर परिश्रम, संयमित जीवन, कर्तव्य पालन, ये चार गुण उनमें प्रमुखता से पाए जाते हैं। ये कठोर अनुचित, उचित, झूठ, सच, भला बुरा आज के बारे में भेद करना अच्छी तरह से जानते हैं। वे झूठ बोलना पाप समझते हैं, इसलिए वे झूठ नहीं बोलते। वे कोई भी कार्य काफी सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर करते हैं, साथ ही कोई भी अनैतिक कार्य करने से डरते हैं। इस प्रकार अनुशासन से बालकों का भविष्य सुंदर एवं सुखद बनता जाता है। नंबर दो, बालक अनुशासन अपने परिवारजनों एवं शिक्षकों से सीखता है। बालक में नकल अथवा अनुकरण करने की प्रबल योग्यता होती है। जन्म के समय बालक तो अनुशासनहीन होता है और न ही अनुशासित। वह तो केवल एक जीता जागता इंसान होता है जिसके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा आदि की समस्त जिम्मेदारी माता पिता एवं परिवारजनों पर रहती है। माता पिता एवं परिवार के सदस्य जिस तरह के आचरण व व्यवहार करते हैं, बालक भी उन्हीं तरह के व्यवहार करते हैं। यदि माता पिता बालक को यह सिखाते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, परंतु यदि वे चोरी के धंधों में लिप्त रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो बालक भी चोरी करना एवं झूठ बोलना सीख जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि माता पिता एवं परिवारजनों का नैतिक मूल्य एवं आदर्श ऊंचा होना चाहिए। जब बालक बड़ा हो जाता है तब वह विद्यार्जन है तो विद्यालय जाने लगता है। वहाँ पर वह शिक्षकों के व्यवहारों एवं आचरणों से बहुत अधिक प्रभावित होता है। बालक शिक्षक को अपना ही आदर्श मानते हैं और आगे चलकर उन्हीं की तरह ही व्यवहार करना चाहते हैं। अतः स्पष्ट है कि बालक अनुशासन अपने परिवारजनों एवं शिक्षकों से सीखता है। नंबर 3, अनुशासन से बालक नैतिक मूल्यों को सीखता है। चिल्ड्रंस लर्न्स मोरल वैल्यूज फ्रॉम डिसिप्लिन। नैतिक मूल्यों व आदर्शों को सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम अनुशासन है। अनुशासन प्रशिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जीवन मूल्यों को सीखता है। अनुशासित व्यक्ति सदाचारी होता है, वह संयमित जीवन जीता है, उसे अपने इंद्रियों को वश में करना आता है। वह इंद्रियों का गुलाम नहीं होता, बल्कि इंद्रियां उसका गुलाम होती है। वह विषम से विषम परिस्थिति में भी नैतिक मूल्यों को नहीं त्यागता है तथा सत्य, ईमानदारी एवं परोपकार के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। यह रामायण की यह उक्ति 100% चरितार्थ होती आती है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पय दृढ़ राजा हरिश्चंद्र के, टरे न सत्य विचार। पृष्ठ संख्या 436। अर्थात सूरज एवं चंद्रमा भले ही प्रकृति के नियमों को तोड़ दें, सांसारिक व्यक्ति भले ही अपना कर्तव्य करना छोड़ दे, पर सत्य हरिश्चंद्र का, सत्यता का विचार कदापि नहीं टल सकता। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अनुशासन नैतिक मूल्यों एवं व्यवहारों को सिखाने का एक सशक्त एवं प्रभावशाली माध्यम है। नंबर 4, अनुशासन निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर अटेनिंग डिटरमिनेंट ऑब्जेक्टिव। संसार का हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अवश्य ही कुछ निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण करता है। केवल उद्देश्यों के निर्धारण मात्र से ही सफलता नहीं मिल जाती, अपितु उसके लिए कठोर परिश्रम भी करना पड़ता है। कठोर परिश्रम की भावना अनुशासन से आती है। अतः अनुशासन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त माध्यम है। नंबर 5, अनुशासन के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। मोरल एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर डिसिप्लिन। अनुशासन एवं नैतिक शिक्षा दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं तथा इन दोनों में आपस में गहरा संबंध है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व भी नहीं है। जहाँ अनुशासन है वहाँ नैतिक आचरण, व्यवहार, कार्य एवं आदर्श होंगे ही। इसी प्रकार जहाँ नैतिक मूल्य होंगे वहाँ अनुशासन होगा ही। सदैव स्मरण रहे, अनुशासन की स्थापना के लिए शिक्षा व्यवस्था में नैतिक एवं चारित्रिक दोष पर जोर देना होगा ताकि बालकों को उचित अनुचित, सही गलत, अच्छे बुरे आदि के बारे में ज्ञान हो सके। इसलिए अब बालकों के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। अनुशासन की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। मानव जीवन में अनुशासन की कितनी अधिक आवश्यकता है इसे शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है। हम जितनी ही अधिक इसे शब्दों में बांधने का प्रयास करते हैं उतना ही अधिक शब्द फिसलते जाते हैं। इतना ही कहना काफी होगा कि अनुशासन मानव जीवन का प्राण है, आत्मा है। यदि शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं रहता, वह एक लाश की तरह होता है जो 2-4 दिनों में ही सड़ गल कर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अनुशासन के माध्यम से ही एक सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज का निर्माण होता है। हम जरा प्रकृति के नियमों का अवहेलना करें और अवलोकन करें तो पाएंगे कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है। पृथ्वी बिना थके बिना रुके अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। सूरज के चारों तरफ घूमती है जिससे दिन रात होते हैं। मौसम में परिवर्तन होता है, सर्दी गर्मी बरसात के मौसम आते हैं। आकाश में ग्रह नक्षत्र भी समय के साथ अपनी अपनी दिशा बदलते रहते हैं। पर्वत भी अटल रहकर अपने कर्तव्यों की पालना करते हैं। सागर की लहरें भी निरंतर बनते और मिटते रहती हैं। धरती भी सर्दी गर्मी वर्षा को सहन करते हुए अटल रहती है। और बीजों को, वनस्पतियों को, वन्य जीव जंतुओं को संभल कर रखती है। इस प्रकार संसार की सभी वस्तुएं परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं, जिससे संसार का हर प्राणी सुख पाता है। जरा सोचे, यदि प्रकृति ने अपने नियम तोड़ दिए होते तो क्या होता? सर्वत्र विनाश ही विनाश। सागर यदि अपनी मर्यादा को तोड़कर बाहर निकल जाए तो संपूर्ण धरा पर जल प्रलय हो जाएगा। पृथ्वी अपने सहनशीलता को तोड़ दे तो भूकंप हो जाएगा और सर्वनाश मच जाएगा। इसी प्रकार मानव जीवन में शांति, सुरक्षा व सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुशासन जरूरी है। यदि अनुशासन नहीं होगा तो लोग अपने अपने मन से कार्य करने लगेंगे, इससे अराजकता फैलेगी। समाज में लूटपाट, चोरी डकैती, मारपीट, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद होने लगेंगे। समाज की सारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी तथा संपूर्ण मानव समाज ही आपस में लड़ झगड़ कर नष्ट हो जाएगा। इसलिए सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासित रहना जरूरी है। पृष्ठ संख्या 437 अनुशासन की आवश्यकता को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत वर्णित किया गया है। नंबर एक, उत्तम स्वास्थ्य के प्रति अनुशासन उत्तम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। अधिकांश बीमारियों की जड़ अनुशासनहीन जीवन जीना है, जैसे एड्स। एड्स एक प्रकार की खतरनाक बीमारी है जिसका अंत दर्दनाक मौत है। इसके फैलने का प्रमुख कारण यौन व्यभिचार है। जब व्यक्ति एक से अधिक लोगों के साथ लैंगिक संभोग करता है तो एड्स होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए संयमित जीवन जीना जरूरी है। पति पत्नी का आपस में प्यार एवं विश्वास होना चाहिए, उनमें समर्पण की भावना होनी चाहिए। इसी प्रकार मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, मानसिक रोग, उच्च रक्तचाप आदि रोग गलत खान पान के कारण ही उत्पन्न होते हैं। जब पेट को ही भंडार गृह बना दिया जाए, उसमें समय को समय तले भुने मिर्च मसालेदार चटपटे व्यंजन, घी शक्कर से युक्त भोजन को उड़ेला जाए तो निश्चित ही अनेक प्रकार की व्याधियां बीमारियां आ घेरेंगे। इसलिए पेट को पेट समझे, ना कि हांडी। इसलिए अनुचित और अनुशासित जीवन जीना अति आवश्यक है। इसी प्रकार मन को वश में रखना भी आवश्यक है, क्योंकि मन चंचल होता है। सारी दुष्प्रवृत्तियों का जन्म मन की चंचलता से ही होता है। इसलिए उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संयमित एवं मर्यादित जीवन जीना बेहद जरूरी है। नंबर दो, सामाजिक सुरक्षा के लिए, फॉर सोशल सिक्योरिटी। अनुशासन से सुरक्षा की भावना का विकास होता है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब वहां के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मिलती है। लोग अपने धन जन के प्रति आश्वस्त होते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, तभी वे पूरे मन से कार्य करते हैं, धन का निवेश करते हैं तथा संपत्ति को संजो कर रखते हैं। परंतु यदि उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती है तो वे हमेशा ही आशंकित रहेंगे। वे सदैव डरे डरे सहमे सहमे रहेंगे, जिससे उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। उन्हें हमेशा ही यह भय सताता रहेगा कि न जाने कब आतंकवादी, लुटेरे, चोर उनकी हत्या कर देंगे, धन संपदा छीन कर ले जाएंगे, लड़की के साथ गलत व्यवहार करेंगे, बलात्कार करेंगे, घर में आग लगा देंगे आदि आदि। इसी भय से वे पूरे मन से कार्य नहीं कर सकेंगे, फलतः राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकेगा। इसलिए अनुशासन सामाजिक सुरक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 438, नंबर तीन, सफलता प्राप्त करने के लिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने में अनुशासन का प्रमुख स्थान है। अनुशासित व्यक्ति पूरे मनोयोग से कार्य करता है, कठिन परिश्रम करता है, समय का पाबंद होता है, अनुशासित व मर्यादित जीवन जीता है। फलतः सफलता उसके चरण चूमती है। दुर्गा, लक्ष्मी एवं सरस्वती उसके घर में निवास करती हैं। उन्नति एवं प्रगति के हर द्वार उसके लिए खुले रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति अनियमित, अमर्यादित, अस्त व्यस्त जीवन जीता है, उसे हर वक्त पराजय का मुंह देखना पड़ता है। सफलता उससे दूरों को रहती है। निष्कर्षता वह व्यक्ति निराश, हताश, दुखी होकर जीवन जीता है। अनुशासनहीन व्यक्ति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, अतः उसका जीवन जीते जी नरक के समान हो जाता है। नंबर चार, सामाजिक समायोजन में, फॉर बेटर सोशल एडजस्टमेंट। सामाजिक समायोजन पारिवारिक एवं व्यक्तिगत सुसमायोजन के लिए अति आवश्यक है। अनुशासित व्यक्ति घर, परिवार, समाज एवं राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वह हर एक कार्य को समय पर पूरा करता है। वैसे भी अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ, लगनशील एवं उद्यमी व्यक्ति हर किसी के चहेता होते हैं। मानव जीवन में हर पड़ाव में समायोजन की आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं वृद्धावस्था में समायोजन की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है। वृद्धावस्था में नई नई पीढ़ियों, बहुओं, बेटों, पोते पोतियों से समायोजन स्थापित करना पड़ता है। इसी प्रकार किशोरावस्था एवं बाल्यावस्था में भी विद्यालय के संगी साथियों, माता पिता एवं पड़ोसी बालकों के साथ समायोजन स्थापित करना अति आवश्यक होता है। व्यक्ति में जितना अधिक आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति, काम की वासना, परोपकार की भावना होगी, उतना ही जल्दी परिवार एवं समाज के लोगों के साथ समायोजन स्थापित कर लेगा। इसके ठीक विपरीत समायोजन के असफल होने पर प्रायः अनुपयुक्तता की भावना पैदा होगी। अतः स्पष्ट है कि सुसमायोजन के लिए अनुशासन का होना परम आवश्यक है। नंबर 5, नैतिक विकास में। नैतिक विकास का आधार ही अनुशासन है। अनुशासन से नैतिक विकास होता है। बालकों को बाल अपराधी बनने से रोकने के लिए उन्हें अनुशासित रहना सिखाना चाहिए।